बाजा कुछ लल्लन टॉप सुनते हैं।
एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ये सोए हुए लोगों की ख्वाहिश है। जागने वाले तो खोजते हैं सिनेमा के सबसे ऊंचे दरख्त, जिनकी छाँव में मिलते हैं जिंदगी के सबक, दिमाग को डिटॉक्स करने वाली और दिल को प्रेम देने वाली फिल्मों पर करेंगे बात। सुनिए सिने सन्यासी गजेंद्र सिंह भाटी के साथ।
आप सुन रहे हैं सिने सन्यासी बाजा पर। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी ऐसी फिल्मों के बारे में जो सिनेमाघर से बाहर आने पर भी हमारे साथ रहती हैं, जो खाली सपना नहीं है बल्कि असल ज़िंदगी में जो समाधान हमारी ज़िंदगी में काम आते हैं वो भी देती है। गोल्प होलियो शोक्ति फिल्म का हमने जिक्र किया था, जिसके ऊपर ऋषिकेश मुखर्जी ने आधारित बावर्ची बनाई थी। कैसे एक बावर्ची आता है और एक परिवार को अशांत से शांत जीवन रहने में मदद करता है, सिखा के चला जाता है, जैसे आता है वैसे चला जाता है। लेकिन आज बात करेंगे ऐसी फिल्मों के बारे में जो कोई समाधान न भी देके जाती हूँ लेकिन उनका भी एक महत्व है। आज तक हमने सिने सन्यासी में जितनी भी बातें की हैं उसमें एक परम आवश्यक बात ये रही है कि मनोरंजन ही महत्वपूर्ण नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज हम बात करेंगे मनोरंजन की, एक ऐसी फिल्म की, एक ऐसी जापानी फिल्म की जो बहुत मनोरंजक फिल्म है और वो जो मुख्य धारा की मसाला फिल्में होती हैं मनोरंजन के मामले में उनको भी पीछे छोड़ती, इतनी मनोरंजक फिल्म है। उस पर बात करने से पहले बात करूँगा 90 के दशक की, जब कई यादगार फिल्में रिलीज़ हुई थी। दो फिल्में तो ऐसी थी जो आज के असल ज़िंदगी को बहुत अच्छे से रिजम्बल करती है। आज 2023 में फरवरी के अंत में आते आते हम जो सुर्खियां पढ़ते हैं हमारे आसपास, उसमें जो दो या तीन जो प्रमुख मुद्दे अभी देश को परेशान कर रहे हैं, वैसे ही माहौल को क्रिएट करने वाली दो फिल्में उस दौरान आई थी। एक फिल्म आई थी 1995 में बॉम्बे मणिरत्नम की, जो बताती हैं कि सांप्रदायिकता की भावना की वजह से देश में असुरक्षा की कैसी स्थिति है, और उसके चलते नायक और नायिका होते हैं उनके बच्चे हैं वो दंगे की आग में खो जाते हैं, उनको ढूंढ रहे होते हैं, और नेता जो होते हैं जो सांप्रदायिकता फैला रहे होते हैं वो हमको नज़र आते हैं। चौंकाने वाली, खौफ में डालने वाली फिल्म, कर्णप्रिय संगीत, ग्रिपिंग फिल्म, लव मैरिज, कैसे अपने गांव से भाग के दो लोग अंतर धार्मिक विवाह करते हैं, कई सारी नई चीज़ें उसमें थी। संगीत बहुत अच्छा था उसका। इसी तरीके से उसी के अगले साल एक फिल्म आई थी माचिस गुलजार की, जो पंजाब में 80 के दशक में जो उग्रवाद का दौर था और स्टेट अग्रेशन जो उसके खिलाफ था उसके बारे में बात करती थी। जैसा माहौल उन फिल्मों में हमने देखा ऑलमोस्ट वैसा ही माहौल आज वापस क्रिएट होता वैसा नज़र आता है। ये वो फिल्में थी जिन्होंने आईना दिखाया समाज का। लेकिन उस समय में मैं पढ़ाई किया करता था, स्कूल में पढ़ रहा था, और इन फिल्मों ने जितना आकर्षित नहीं किया उतना उस समय दूसरी किस्म की फिल्में किया करती थी। जैसे 1995 में ही DDLJ आई थी, DDLJ ने बड़ा आकर्षित किया था। एक बार तो एक स्क्रीनिंग के लिए हमें स्कूल की तरफ से लेके जाया गया था। आश्चर्य की बात थी कि भला स्कूल वाले आपको फिल्म दिखाने लेके जा रहे हैं, लेकिन वो जो स्कूल चलाने वाले थे वो एक सिनेमा घर भी चलाया करते थे, इसी कारण से शायद हमको लेके जाया गया था। और एक बार मैंने परिवार के साथ जाके देखी, इस वजह से दो बार DDLJ को उस समय देखा थिएटर में। DDLJ के ठीक पास में एक फिल्म और रिलीज़ हुई थी, उसका नाम था अंगरक्षक, सनी देओल की फिल्म थी, और ये उन फिल्मों में से थी जो एक्सप्लोरेशन के हिसाब से नई कहानी लगी, और उसमें जो विलेन होता है वो देख के हैरानी हुई, और राहत देने वाली फिल्म थी, एंजॉय करने वाली फिल्म थी। उसमें कुलभूषण खरबंदा का किरदार होता है, वो एक नेता होता है, उसकी एक पार्टी होती है भारतीय एकता पार्टी, वो अपनी बेटी का अंगरक्षक बनाता है सनी देओल को। इसकी ओपनिंग बड़ी विहंगम सी है कि सनी देओल का किरदार अजय है, वो जेल में बंद है, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे पागलखाने में शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ उसका इलाज चलता है। उसके बाद 3 साल के बाद वो बरी कर दिया जाता है। और विहंगम इस सेंस में है कि एक तो उस किरदार का नाम अजय है और दूसरा वो जिस सेटअप में है उससे देख के याद आती है 1990 में आई फिल्म घायल की। घायल के अंत में ये होता है कि घायल के अंत में अजय का किरदार जो होता है सनी देओल का, वो बलवंत राय को मार देता है लोगों के बीच में और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। कल्ट आइकॉनिक फिल्म थी। उसके बाद उस अजय का क्या हुआ किसी फिल्म में नहीं पता चला। वो राजकुमार संतोषी की फिल्म थी और ये अंगरक्षक है किसी साउथ के डायरेक्टर की फिल्म थी। और इस फिल्म के अंदर हमको फिर अजय दिखता है, वो जेल में बंद है, सजा काट रहा है, किस लिए काट रहा है हमको नहीं पता, पर 3 साल में बरी हो जाता है। फिर वो एक लड़की का, मासूम सी लड़की का अंगरक्षक बनता है, उसकी रक्षा करने की शपथ लेता है और अंत तक वो कैसे क्या करता है। तो अमेजिंग कहानी, क्योंकि अंत में जिस व्यक्ति द्वारा उस लड़की की जान को खतरा होता है वो कौन होता है ये देख के दर्शकों का दिल दहल जाता है। उनको यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई इतना कैसे गिर सकता है। तो ये अंगरक्षकों पे बनी फिल्म थी। अंगरक्षकों पे बनी एक फिल्म मैंने बाद में और देखी जो बहुत पसंद नहीं आई, लोगों को बहुत पसंद आई लेकिन मुझे नहीं पसंद आई। वो फिल्म थी सलमान खान की बॉडीगार्ड जो 2011 में आई थी, सिद्दीक ने डायरेक्ट की थी और उसमें सलमान का लवली सिंह का कैरेक्टर होता है जो दिव्या नाम की लड़की का बॉडीगार्ड बनता है। करीना ने वो रोल प्ले किया था। अब बीच बीच में वो लड़ता रहता, फाइट करता रहता है, फिर बीच बीच में लव ट्रायंगल भी चलता रहता है। ट्रायंगल इन द सेंस कि एक लड़की है वो उस बॉडीगार्ड को, एक लड़की क्या करीना का किरदार ही होता है जो नाम बदल के लवली को अप्रोच करता है और उसे प्यार करने लगती है, एक पैरेलल कैरेक्टर बना लेती है वो अपना। तो एक तरफ लकी और उस लड़की का ट्रैक चल रहा है, वो लड़की जो काल्पनिक रूप से बनाई गई है करीना के दूसरे पात्र के द्वारा, दिव्या के द्वारा। तो असली दिव्या प्यार कर रही है और फिर वो नकली कैरेक्टर के जरिए उससे प्यार कर रही, तो एक किस्म का लव ट्राइंगल सा बनता है। ये बॉडीगार्ड देखी, उसके बाद मुझे तुरंत एक ऐसी बॉडीगार्ड नाम की फिल्म की याद आई जिसको देख के मुझे लगा कि यार कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है एक फिल्म की मेकिंग में। और वो ही आज की हमारी फिल्म है, जापानी फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसका नाम भी बॉडीगार्ड है, उसका मतलब होता है बॉडीगार्ड। 1961 में एक फिल्म आई थी, उसके डायरेक्टर थे अकिरा कुरोसावा, उस फिल्म का नाम था योजिम्बो। सिने सन्यासी में आज की हमारी फिल्म योजिम्बो ही है। योजिम्बो का मतलब होता है बॉडीगार्ड। और ये बॉडीगार्ड नाम की एक ऐसी फिल्म थी जिसके जैसी फिल्म मैंने पहले कभी नहीं देखी और देखा तो मैं दंग रह गया। और मैंने सोचा कि यार मुख्य धारा की एक फिल्म है, सलमान खान की फिल्म है और है, और इतना पैसा लगा है और ये लोग क्या बना के गए हैं। और जो दूसरी बॉडीगार्ड मैं देख रहा हूँ, एक विदेशी भाषा की फिल्म जिसकी भाषा मैं नहीं जानता, एक्टर्स को नहीं जानता, वहाँ के समाज से मेरा ताल्लुक नहीं इतना, लेकिन फिर भी मैं उसको ज़्यादा तल्लीनता के साथ देख पाया, ज़्यादा आनंद लेके उसको एंजॉय कर पाया। आखिर ऐसा कैसे, तब से वो मेरे दिमाग में अटक गई। तो आप भी वर्ल्ड सिनेमा को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको योजिम्बो ज़रूर देखनी चाहिए। योजिम्बो के अंदर तोशिरो मिफुने की कमाल की एक्टिंग नज़र आती है। योजिम्बो फिल्म के साथ मेरी सबसे बड़ी अच्छी स्मृति एक ये है कि उसकी जो ओपनिंग है, मतलब दुनिया के सिनेमा में मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं उनमें जो सबसे अच्छी ओपनिंग देखी है मैंने, उसमें से एक योजिम्बो होगी। मतलब डिस्टिंक्ट है उसकी, है कि उसके अंदर क्या होता है कि एक सामुराई होता है। वो सामुराई है, वो ऐसे दौर का होता है जब सामुराई लोग नौकरियों से निकल गए होते हैं, वो सिस्टम ख़त्म हो गया होता है, बेरोज़गार से हो गए होते हैं और वो सिस्टम जा रहा होता है, तो कुछ इस तरीके का माहौल होता है। और उसके अंदर वो बॉडीगार्ड है, वो अब कहीं जा रहा है, एक पगडंडी सी है, गांव की पगडंडी सी लगने वाली पगडंडी है, उस पर चलता चला जा रहा है और मीडियम क्लोजअप शॉट है, क्लोजअप मीडियम क्लोजअप शॉट कह सकते हो आप उसको। पीठ दिख रही है उसकी, गर्दन दिख रही है, सर दिख रहा है और पीठ दिख रही है, कंधे से दिख रहे हैं पीछे से। और वो उसने खुजली कर रहा है अपने सर पे और बड़ा सा कैजुअल सा है, एक सामुराई के साथ जो अनुशासन जुड़ा होता है वैसा अनुशासन नहीं होता है। किमोनो पहना होता है उसने परिधान पारंपरिक, उसमें उसकी गर्दन धसी हुई सी होती है और वो एकदम दांतों में शायद तिनका दबाए एकदम कैजुअल अप्रोच में वो चल रहा होता है। तो वो जा रहा होता है और आगे जाता है, तो एक समय ऐसा था जब पगडंडी रुक जाती, तीन दिशाओं में वो जाने लगती है, तो वो रुक जाता, उसको समझ नहीं आता मैं किस तरफ जाऊँ, क्योंकि उसका कोई तय नहीं होता किधर जाना है। जहाँ उसको खाने को अन्न का दाना मिल जाए और पीने को साके मिल जाए वो उधर ही जाना चाहता है। तो ऐसे में वो क्या निर्णय लेगा ये भी अमेजिंग होता है। क्या होता है कि वहाँ पे एक लकड़ी पड़ी होती है, वो लकड़ी को उठाता है, हवा में उछालता है, लकड़ी गिरती है और लकड़ी का मुंह जिस दिशा की तरफ होता है वो मुड़ के उस तरफ चला जाता है। इतना अनक्लियर उसको अपने फ्यूचर के बारे में होता है कि कल को क्या करूँगा वो नहीं जानता है। एक ऐसा किरदार निभाना जिसको अपने भविष्य के बारे में कोई आभास नहीं है, इतना बंजारा किस्म का वो किरदार है, वो देखना अपने आप में सिनेमा घरों में बड़ा फैसिनेटिंग होता है, क्योंकि जो दर्शक देख रहा होता है वो अपनी लाइफ के अंदर सिक्योरिटी चाहता है, उसको पता होना चाहिए कि कल मैं क्या करने वाला हूँ, कल मेरा भविष्य क्या होगा, कल मेरी सुरक्षा कितनी होगी, फाइनेंशियली मैं कहाँ खड़ा होऊंगा। ऐसे में चूंकि हम वो बंजारों वाले जीवन नहीं जी सकते, दर्शक नहीं जी सकता, तो उसके लिए ऐसा किरदार पर्दे पर देखना अपने आप में बड़ा थ्रिलिंग सा किरदार होता है, वो उसके लिए फैंसी होती है, वो रियलिटी कभी उसकी बन नहीं सकती है, बन जाए तो उसके लिए बड़ा खौफनाक हो जाएगा वो दिन। तो ये ओपनिंग बहुत कमाल की होती है, ये मेरे मन में बस गया सा होता है। तो इसके जो बोल्ड स्ट्रोक्स है ना योजिम्बो के, ये मुझे बहुत दंग करके गए। बोल्ड स्ट्रोक से मेरा मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए आप एक कागज़ ले लीजिए और उसको लगाइए आप कैनवस पे, और वो कैनवस के एकदम कोरा कैनवस है, अब आप चित्र बनाने जब निकलते हैं तो आप अपने हाथ से एक अगर स्ट्रोक मारते हैं तो आपको नहीं पता होता है, जब तक कि आप एक बहुत ही प्रशिक्षित और बहुत ही अनुभवी पेंटर ना हो तो आपको नहीं पता है कि आपका वो एक स्ट्रोक है उसको आप कंटिन्यू करते हुए कल्मिनेशन तक कैसे पहुंचाएंगे। किसी भी आर्ट वर्क में, राइटिंग में और एडिटिंग में जो आपका स्ट्रोक होता है उसकी कंटिन्यूएंस आप कैसे करके लेके जाएंगे, ये आपकी ताकत होती है। और एक डर होता है कि वो स्ट्रोक कंटिन्यू ना कर पाए, तो एक बड़ा भय होता है चित्रकार के मन में भी होता है, ये किसी भी क्रिएटिव आदमी के मन में होता है कि जो उसने शुरू किया उसको वो अंत तक कैसे लेके जाएगा। तो एक वो गैस पे चल रहा होता है। देखने को हम बहुत ही अनुभवी एक्टर्स को देखते हुए बोलते हैं कि अरे वाह इसके तो मायात का खेल होगा, या किसी क्रिकेटर को देख के ये बोलते हैं, लेकिन उन सबसे आप पूछेंगे तो यही पाएंगे कि जिस दिन वो हर बार जब कुछ नया करने को उतरते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि वो कल्मिनेशन तक अपने स्ट्रोक को लेके जा सकेंगे या नहीं लेके जा सकेंगे। ऐसे में बोल्ड तरीके से स्ट्रोक मारना, पहला स्ट्रोक इतना बोल्ड मारना और भी ज़्यादा उसको कठिन बना देता है। आप सुनियोजित ढंग से स्ट्रोक नहीं मार रहे हो, आप बोल्ड स्ट्रोक मार रहे हो। तो कुरोसावा की फिल्मों के जो स्ट्रोक्स थे ऐसे बोल्ड स्ट्रोक्स होते हैं कि आज से कोई 70-50 साल पहले किसी ने कोई फिल्में बनाई हैं जिसका ओपनिंग सीन ऐसा होगा कि आप चौंक जाओगे। कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सूचनाएँ देने का बोझ उसमें नज़र नहीं आता है, बहुत ज़्यादा जानकारी देख के आपको तसल्ली में डालने की कोशिश हो ऐसा भी नहीं नज़र आता है, दर्शक को बांधने की कोशिश हो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं नज़र आता है। उसका बोल्ड स्ट्रोक है वो एकदम न्यू इन्फॉर्मेशन है, ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन है जो आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जैसे उजिम्बो के अंदर जो वो उसका पगडंडी पर चलते हुए चले जाना है, वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता है। पहला जो सबसे पहला फ्रेम होता है वो फ्रेम ये होता है कि वो उजिम्बो की सर दिख रहा है और गर्दन दिख रही है, और वो सामने देख रहा होता बहुत पहाड़ियाँ नज़र आ रही, पहाड़ियों की चोटियाँ नज़र आ रही, इतना वो छोटा सा फ्रेम होता है, क्लोज सा और दम घोंटने वाला सा फ्रेम होता है, ये होता है। फिर वो पगडंडी में जाता है, लकड़ी उछालता है, दूसरी दिशा में जाता है, वहाँ तक उसका चेहरा तक नहीं दिखता है। आमतौर पे आज के समय में रिटेंशन स्पैन कम हो गया, उसके वजह से ये होता है कि फटाफट आप बांधो सामने वाले को, एक क्षण भर में बांधो, तभी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकेंड में आप बांध पाओगे। पहले में बांधा तो दूसरे तीसरे तक बांधते हुए श्रृंखला बनानी होती है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस भी है कि जो दर्शक होगा सिनेमा का वो उसको आनंद ले सकेगा, उसको एंजॉय कर सकेगा, और वो उसकी जो टेस्ट है, अगर उसका अच्छा टेस्ट होगा तो वो इस डिसीजन को सराहेगा फिल्म मेकर के। तो वो बोल्ड स्ट्रोक होता है। फिर एक बोल्ड स्ट्रोक और सेकंड बोल्ड स्ट्रोक नज़र आता है, वो ये होता है कि जब वो गाँव में एक प्रवेश करता है सामने, तो सामने से उसके कुछ आ रहा होता है जो उसको चौंकाता है कुछ क्षण के लिए और हमें भी चौंका देता है। क्या चौंकाता है? सामने से कुत्ता आ रहा होता है दौड़ता हुआ सा, मतलब नॉर्मल अपनी गति से दौड़ता हुआ आ रहा होता है, वो उसको आप कह सकते हैं कि वो चलता हुआ आ रहा होता है, और बेफिक्र सा कुत्ता होता है, उसको परवाह नहीं होती है कि क्या आसपास कौन खड़ा है, कहां से क्या है, वो आ रहा होता है और गुजर जाता है। खास बात ये होती है कि उसके मुँह में कुछ होता है। क्या होता है उसके मुँह में? उसके मुँह में एक इंसान का कटा हुआ हाथ होता है और वो गुजर जाता है। तो वो देख के आप चौंकते हो, कि फिल्म का पहला सीन है जहाँ पे योजिम्बो का आपको चेहरा दिखा है, उस किरदार का चेहरा दिखा और एक गांव में एंटर किया, पहली बार कहानी कहीं प्रवेश कर रही है और सामने से कुत्ता आ रहा है जिसके मुंह में कटा हुआ हाथ है। अब आपके मन में पचासों सवाल हैं, आपके मन में अनेकों जिज्ञासाएं हैं, आपके मन में एक किस्म का डर है, एंक्शसनेस है। ये दूसरा बोल्ड स्ट्रोक है, इससे बोल्ड स्ट्रोक कुछ हो नहीं सकता है। और यहाँ तक आते आते फिल्म में कुछ एलिमेंट कुछ दिखाए ही नहीं जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं दिखाया जाता ऑलमोस्ट। तो ये बड़ी अद्भुत सी उसमें बात होती है। तो बोल्ड स्ट्रोक्स फिल्म मेकर्स के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आज के समय में फिल्मों में बोल्ड स्ट्रोक्स बड़े मिसिंग है, ओपनिंग के अंदर और बाकी जगहों में भी। एक सीरीज तो नहीं कहूँगा उससे फिल्म कहूँगा, एक 2020 में फिल्म आई थी, अभी नेटफ्लिक्स पे है, द हाफ ऑफ इट, कमिंग ऑफ एज ड्रामा है। तो उसके अंदर एक स्कूली छात्रा होती है एस्टर फ्लोर्स, एस्टर फ्लोर्स का किरदार होता है, वो कहता है कि मेरे एक पेंटिंग टीचर हुआ करते थे, उन्होंने एक बार बोला था कि एक अच्छी पेंटिंग में और एक महान पेंटिंग में अक्सर सिर्फ 5 स्ट्रोक्स का फ़र्क होता है, और वो आमतौर पर जो पेंटिंग होती है उसमें 5 सबसे बोल्ड स्ट्रोक्स होते हैं, उसी से फ़र्क आता है कि वो औसत बनेगी महान बनेगी। और जब हम एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने के अंदर बहुत बड़ा परिश्रम कर देते हैं तो फिर हम इस डर में नहीं रहना चाहते कि भाई कहीं एक बोल्ड स्ट्रोक गलत मार दें और ऐसा ना हो कि पूरी पेंटिंग खराब हो जाए, पूरा परिश्रम खराब हो जाए। तो ये एक भय बना रहता है, तो इसीलिए मैंने पेंटिंग करनी छोड़ दी। तो एस्टर का किरदार ये बोलता है। तो लेकिन ये है कि कुरोसावा ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने अपने कैनवास पे 5 बोल्ड स्ट्रोक्स हमेशा मारे, हर फिल्म के जरिए मारे, और उन्होंने कभी पेंटिंग करनी अपनी छोड़ी नहीं सिनेमा ही पे। ये और बात थी कि ऐसा समय हुआ जब उनके पास पैसे नहीं रहे, प्रोड्यूसर्स उनको सपोर्ट करने को नहीं आते रहे, जब उन्होंने एपिक फिल्में बना दी उसके बाद भी उनके बैकर्स बहुत कम थे, और एक दौर तो ऐसा आया जब उनके पास विचार थे, फिल्में बनानी थी लेकिन कोई प्रोड्यूसर नहीं थे। ऐसे में हॉलीवुड के उनको जो शागिर्द थे, शिष्य थे, प्रशंसक थे, वो मिल के आए और उन्होंने उनको पुश किया और उनको सपोर्ट किया, और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पड़ाव की आखिरी फिल्में डायरेक्ट की, अनुभव से भरी हुई और अद्भुत फिल्में, आखिरी समय तक भी अपना टच न छोड़ने वाली फिल्में। योजिम्बो 1961 में रिलीज़ हुई थी और अपने समय की बहुत बड़ी हिट्स में से एक थी, जापानी सिनेमा की तो शायद उस समय की सबसे बड़ी हिट थी, और कुरोसावा की भी ऑल टाइम सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी। बहुत ही अनूठी फिल्म, बहुत ही अम्यूजिंग फिल्म आप इसको बोल सकते हैं, कि आप वही बोल्ड स्ट्रोक्स इसमें आगे भी जारी रहता है, आपको पता नहीं होता कब क्या होने वाला है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि क्या होने वाला है। एटलीस्ट जब मैंने देखा मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था कि अब क्या होने वाला है। बहुत क्षणों में तो ऐसा लगा कि अच्छा अब ये होगा, और वहीं उसी क्षण डायरेक्टर फैसला कुछ और लेता है और आप जो सोचते हो वो नहीं होता है। तो अंत तक ये जारी रहता है और यही जो एक फिल्म को फ्रेश बनाए रखता है। फिल्म अपने आप में एक और अनूठी चीज़ के लिए आपको पसंद आएगी, वो है इसकी कॉमेडी, ह्यूमर। कुरोसावा की कई फिल्मों में कॉमेडी नहीं थी लेकिन कुछ एक जो फिल्में थी जिसमें ह्यूमर बहुत था, उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमर वाली फिल्म आप इसको बोलो तो अतिशयोक्ति नहीं है। जैसे एक सीन इसमें बहुत हंसाने वाला होता है कि युद्ध का सीन होता है, गांव के 2 गुट आमने सामने होते हैं और वो लाइन बना के खड़े होते हैं, 2-2, 3-3 की लाइन में लंबी लंबी, ऐसा मतलब कहता है ना कि आप जैसे कोई बड़ा फौज खड़ी है आमने सामने, और वो ऐसे देख रहे होते हैं एक दूसरे को जैसे एक दूसरे के प्राण ले लेंगे, एक दूसरे को बस काट देंगे। लेकिन हो ये रहा होता है कि एक पलड़ा आगे आता है और दूसरा पीछे होता है, फिर वो पीछे चला जाता है, दूसरा आगे आता है, तो वो डराने और भबकाने का ही कर्तव्य कर रहे होते हैं, लेकिन आगे आगे कोई एक भी तलवार अपनी चला नहीं रहा होता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष भयंकर डरपोक होते हैं। उन्होंने युद्ध का पूरा छेड़ा होता है गाँव में माहौल, लेकिन युद्ध करने का उनमें है नहीं। हाँ, वो जितने और नृशंस चीज़ें कर सकते हैं लेकिन एक सामने से युद्ध करने वाला उनके खून में नहीं है। तो ऐसे में जो योजिम्बो हमारा है मुख्य पात्र है, वो ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर घंटे के पास बैठ के एंजॉय कर रहा होता है कि भाई कैसा हंसी का सिलसिला है कि ये लोग इतने दावे कर रहे थे और इतना माहौल बना रखा है, लेकिन अब देखो जो लड़ने की बारी आई तो ये स्थिति है। इसी तरीके से फिल्म में एक किरदार और है जो एक पक्ष होता है उसमें, जो लीडर होता है उसका भाई होता है, उसका शक्ल एकदम कहता है ना कि जंगली जो चूहे होते हैं उनके जैसी होते हैं, 2 बड़े बड़े दांत उसके होते हैं, वो अमेजिंग जापानीज एक्टर हैं, कभी उन पर भी बात होगी। तो वो जिस प्रकार का ह्यूमर निर्मित करते हैं ना, कि वो भोंदू लगना उनको, कि वो कहने के लिए ये है कि बड़ा फियर्स योद्धा है इस गाँव का, लेकिन आप उसको देखो थोड़ा भोंदू है, भोला सा है, और वो अपने दांत बाहर निकाल के जो पहले से निकले हुए हैं आपको डराने का जो प्रयास करता है उसको देख के आप बस खिलखिला के नीचे गिर जाते हो कुर्सी से। तो सिनेमा की दुनिया के सबसे अम्यूजिंग किरदारों में से एक किरदार वो होता है, जंगली चूहे जैसी मोटी शक्ल वाला आदमी। तो ये योजिम्बो है जो हमारी सलमान वाली योजिम्बो से बहुत बेहतर फिल्म। इस फिल्म को लेके कुरोसावा ने कहा था कि भाई लंबे समय से एक बहुत रोचक फिल्म बनाना चाहता था, मैंने इसके बारे में सोचा तो कहानी बड़ी आदर्श थी, बहुत रोचक थी और मुझे हैरानी है कि भी किसी ने पहले क्यों नहीं सोची। इस कहानी के पीछे का जो विचार था वो ये था कि दो पक्ष हैं और उनके बीच में दुश्मनी चलती है, लेकिन दोनों पक्ष हैं वो समान रूप से बुरे हैं, एक से बढ़ के एक बुरे हैं, उनमें से कोई भला नहीं है। ऐसी स्थिति हम आमतौर पर कुरोसावा कहते हैं कि जिंदगी में भी फेस करते हैं कि हम वो कमज़ोर पलड़ा होते हैं जो बीच में फंस के रह जाते हैं दो पक्षों के बीच में, जिनको फिर आप दो इविल्स बोलोगे। उन दो इविल्स के बीच में हमारे लिए चुन पाना बड़ा मुश्किल होता है कि लेसर इविल कौन है, तो हम उसमें फंस के रह जाते हैं। और कुरोसावा ने कहा कि भाई मैंने खुद भी हमेशा चाहा है कि जो ये बैड वर्सेस बैड का जो बैटल होता है, सेंसलेस बैटल होता है, इसको मैं कैसे रोक सकूं किसी तरीके से, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि हम लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं सारे के सारे। इसीलिए जो इस फिल्म का हीरो है वो हम सबसे बहुत अलग है, वो सक्षम है कि अगर वो जाके बीच में अपना पैर गड़ा दे, खड़ा हो जाए, तो वो लड़ाई रोक सकता है उसी क्षण में। और यही चीज़ थी, यही किरदार था जिसके बाद मैंने इस कहानी के बारे में सोचना शुरू किया और यही इसकी शुरुआत थी। तो जो लेसर इविल वाली बात है, आमतौर पे फिल्मों में हम देखते हैं कि जितनी भी ये होमलैंड जैसी सीरीज़ है, जो पॉलिटिकल थ्रिलर्स है, या जो ये स्पाई थ्रिलर्स होती है, ये जो एजेंट्स वाली सीरीज़ और ड्रामास होते हैं जिसके अंदर कोई एजेंट होगा, कोई CIA ऑपरेटिव होगा, कोई FBI वाला बंदा होगा, कोई पुलिस का व्यक्ति होगा, कोई RAW का एजेंट होगा, ये सारे जाते हैं और अपने हर एक बुरे फैसले या बुरे कृत्य को कहते हैं कि मैंने एक लेसर इविल को चुना है। तो लाइफ में जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ होती है जो आज हमारे युवा मन को कैप्चर करती है, हमको नशा देती है, उनके अंदर यही होता है कि भाई हमारा पात्र जो बुरा फैसला ले रहा है, जो फिर भी हमारा केंद्रीय पात्र है, जो फिर भी लाइकेबल पात्र है, जो इतने बुरे काम कर रहा है फिर भी प्रोटोगनिस्ट है और 1, 2, 3, 4, 5 सीज़न तक भी है, और आप उसको जानते हो कि वो ग्रे है, बुरा है, फिर भी आप उसको एक स्टेब्लिशिंग पोजीशन पे रख रहे हो अपने मन में, मेकर्स रख रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना होता है कि भाई वो लेसर इविल है, उसका साथ दे रहा है, एटलीस्ट लेसर इविल है वो। ये जो आज एक जो निचले तल की मोरालिटी चुनी गई है हमारे फिल्म मेकर्स के द्वारा, ये बड़ी चिंताजनक भी है और बड़ी हास्यास्पद भी है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि लेसर इविल है, आप इविल तो इविल है, उसको फिर कैसे करोगे। तो एक तो ये पैमाना हो गया, एक ये परिदृश्य हो गया। दूसरा जो एक अमेजिंग सी सीरीज़ है, फैंटेसी सीरीज़ है, द विचर 2019 में जो आई थी, उसके अंदर जो गैरोल्ट ऑफ रिविया होता है वो कहता है कि इविल तो इविल है, लेसर, ग्रेटर, मिडलिंग, ये क्या होता है, ये सारे के सारे सेम होते हैं, इविल तो इविल है और मैं तुमको जज नहीं कर रहा हूँ। वो एक किरदार से कहता है मैंने भी कोई बहुत अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नहीं की हैं, लेकिन अब अगर मुझे चुनना हुआ एक इविल और दूसरे इविल के बीच में, तो मैं दोनों को ही नहीं चुनूंगा, किसी को नहीं चुनूंगा, मैं क्यों चुनूं किसी को। तो ये बात मैं कर रहा हूँ एंटरटेनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो बड़ी अपनी सुविधा से हमें नशीला मनोरंजन देते हुए दो इविल गढ़ते हैं और उस दो इविल के बीच में लड़ाई झगड़ा चलाते चलाते हमसे एक इविल चुनवाते हैं और अपने सीजन्स को आगे से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो इस सेंस में गैरोल्ट ऑफ रिविया जो है विचर का, वो उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन ये है, हर व्यक्ति का अपना एक पैमाना होता है, हर व्यक्ति का अपना सब कुछ होता है। अपनी योजिम्बो है, जो योजिम्बो के अंदर दो इविल पक्ष हैं, दोनों में से किसी को नहीं चुना जाता, दोनों अंत में जाके ख़त्म हो जाते हैं। पर हाँ, आप कहने को इस योजिम्बो को भी लेसर इविल बोल सकते हो, लेकिन मैं एग्री नहीं करूँगा कि वो लेसर इविल है, क्योंकि उसके अपकृत्यों के पीछे कोई भी उसका पर्सनल फ़ायदा नहीं होता है। उसको बहुत पैसा, उसने कोई पैसा कमाया हो, कोई फ़ायदा उठाया, वैसा मुझे नहीं लगता है। तो ऐसे में उसको बहुत लेसर इविल मैं नहीं कहूँगा, थोड़ी सी महीन बारीक रेखा होती जिससे वो बच के उससे बाहर किया जा सकता है। पर जो दो इविल्स होते हैं उनको दोनों को ही कहानी वैसे नहीं चुनती है। तो ये है योजिम्बो की कहानी, आप खुद देखें उस फिल्म को, एक्सप्लोर करें। पर ये है कि जैसे शुरू में हमारा योजिम्बो जब पगडंडी से आगे बढ़ के फैसला लेता है, गांव तक पहुंचता है, सामने से कुत्ता आया होता है, फिर वो आगे बढ़ता है और गांव में देखता है तो गांव में सन्नाटा होता है, कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। घर तो घरों में लोग दुबके होते हैं, खिड़कियों के ओट से उसको देखते हैं कि कौन आया है, और योजिम्बो है वो कुछ बोलता नहीं, आगे चलता चला जाता है। और कहानी जो होती है वो प्याज की परतों की तरह सिलसिलेवार ढंग से खुलती है। तो एक बोल्ड स्ट्रोक ये भी होता है फिल्म मेकिंग स्टोरी टेलिंग में कि अगर कहानी आपकी प्याज की परतों की तरह खुल रही है तो सबसे ताकतवर तरीका है फिल्म कहने का, कहानी कहने का, सीरीज की कहानी कहने का, कौतूहल जो सिलसिलेवार ढंग से कायम रहता है। अब सामुराई हमारा आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता है तो वहाँ तभी इमारत के सामने से कोई आदमी निकलता है, वो दोनों तरफ गौर से झुक के देखता है किसी चूहे की तरह, और फिर जब देखता कोई खतरा नहीं है तो उसके पास आता है दोनों हाथ मसलता हुआ एकदम किसी लालची व्यापारी की तरह, और विदूषक शरीखा सा पात्र होता है, कुलांचे भरता उसके पास आके ही ऐसे कहते हुए, दांत नचाते हुए कहता है कि भाई क्या तुम बॉडीगार्ड बन के, पर्सनल बॉडीगार्ड बन के पैसा कमाना चाहोगे? फिर वो बोलता है कि भाई यहाँ रेट बढ़ी हुई बहुत ज़्यादा अभी गांव में, मेरा कमीशन एक रियो है, तुम किसका पक्ष लेना चाहोगे? तो बताता है गाँव में दो पक्ष कौन कौन से जिनकी तरफ तुम जा सकते हो। तो एक सिल्क का व्यापारी होता है, एक साके का व्यापारी होता है, साके एक किस्म की मदिरा होती है, और किसका पक्ष लोगे, इस तरीके से वो उससे बात करता है, और फिर वो उससे राय देकर और तुरंत वापस अपने घर में घुस जाता भाग के डर के मारे। तो फिर वो आगे जाता है सामुराई और देखता है कि भाई क्या है, वो एक साके वाले बंदे की दुकान में चला जाता है, वो गरीब सा आदमी होता है, गुस्से में होता है क्योंकि उसके गाँव की स्थिति ख़राब है और सारा कारोबार ठप है, लोग मर रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं। तो वो सामुराई है, अभी भी ज़्यादा कुछ बात नहीं करता, उसका बाहरी आवरण से वो लगता है कि बहुत ही ख़राब आदमी है लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। तो वो साके ओनर जो होता है, सराय वाला मालिक जो होता है, वो उसको खाने के लिए ठंडे चावल देता है कि भाई यही ये ले लो। वो कहता है पैसे मैं तुमसे नहीं लूँगा, बस ये की बात है कि तुम इसको खाओ और चले जाओ यहाँ से, यहाँ पहले ही बहुत खून खराब हो रखा है और तुम यहाँ और रुक के ज़्यादा कुछ फैंटेसी मत पालो किसी प्रकार की। वो सामुराई है, वो रुकने का निर्णय लेता है, तो बढ़िया से उसका साके पीता है, खाना खाता है, कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा और देखूंगा कि मेरे को कहां से माल मिल सकता है। हालांकि उसका जो कहने का तरीका होता है उसके पीछे उसका पर्पस माल या पैसा कमाना नहीं होता, लेकिन वो एक आवरण यही लेके चलता है। और फिर आगे वो जाता है दोनों पक्षों के साथ और क्या बातें करता है और अंत में वो कैसे कैसे रणनीति या स्ट्रेटेजी अपनाता है। और बाकी इसमें एक ये भी है कि जो सामुराई के तौर पे एक सामुराई मूवी है तो इसमें बड़ी मितव्ययता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जगह जगह तलवारें चलाता हुआ किसी को भी काटता हुआ आगे बढ़ रहा है, बहुत मितव्ययी तरीके से ही कुरोसावा हमेशा अपनी फिल्मों के अंदर, सामुराई फिल्मों के अंदर हिंसा है उसको परोसते थे, या फिर जो तलवारबाजी होती थी उसके सीन होते थे। और ये मितव्ययता आज अगर हम आते हैं तो आज आते हैं तो हम देख रहे हैं कि 2023 में भी HBO जैसा जो सबसे शीर्ष एक OTT प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट बनाता है, गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ ड्रैगन और द लास्ट ऑफ अस जैसी जो चीज़ें वो लेके आ रहे हैं, तो द लास्ट ऑफ अस और हाउस ऑफ ड्रैगन जैसी चीज़ों में वो मितव्ययता नज़र आती, इसी वजह से इनको देखते हुए अनुभव भी थोड़ा नया होता है कि इनमें जब एक के पास ड्रैगन नाम का एक सेंट्रल एलिमेंट है जो जितना एक्सप्लॉयट करो आप उतना ही ज़्यादा नशा बांट सकते हो, द लास्ट ऑफ अस में जोम्बी नाम का एलिमेंट है जिसको जितना परोसो उतना आप ज़्यादा आंखें बिना पलक झपकाए हमको मजबूर कर सकते हो कि हम पलक झपकाए बगैर देखें, वहाँ पे मितव्ययता का देखने को मिलता है और उसी वजह से उनको उस कंटेंट को लेके इंटरेस्ट जागता है, उसको देखते रहने की एक मन में इच्छा होती है। कुरोसावा की फिल्मों में ये चीज़ बहुत ही प्रमुखता से नज़र आती थी कि मितव्ययता होती थी, शॉर्ट्स की मितव्ययता होती थी, ऐसे फेंके नहीं जाते थे शॉर्ट्स, सीन्स ऐसे फेंके नहीं जाते थे, फेंक फेंके नहीं बनाते थे कि भाई एक बना लिया, 10 बना लिए, 15 बना लिए, एक अगर शॉट है, एक अगर सीन है, उसके अंदर एक एक चीज़ सुई के जितनी प्रिसीशन के साथ रखी होती थी, उसको वैसे होना तो वैसे ही होना है, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कह सकें कि अतिरिक्त है, इसको हटाए बिना भी काम चल सकता है। तो ये मितव्ययता कमाल की थी। तो बाद में फिल्म में क्या होता है ये हम देखते हैं, पर यह है कि जिस तरीके से वो पगडंडी से चलते चले आता है, जितनी बोल्ड स्ट्रोक के साथ वो फिल्म कहानी को शुरू करता है उसी बोल्ड स्ट्रोक के साथ फिल्म को ख़त्म करके वो अपनी पगडंडी से आगे बढ़ जाता है। ये है, इस फिल्म को लेके ये हुआ था कि जब बहुत अपने समय में बड़ी हिट हुई तो उस समय दूसरे थिएटर वालों का ये कहना था कि भाई ये तो सामुराई मूवी है, इस वजह से हिट हो गई। लेकिन कुरोसावा का ये कहना था कि नहीं, इसका कारण ये नहीं था, इसका कारण ये फिल्म का नायक था, कैरेक्टर था और मैसेज था। और कैरेक्टर ये था कि आप जितना उसके टकराव को टालो, फिर भी ना चले काम, तो सामने वाले को चेताओ कि भी ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी ना हो और कोई बहुत ही बदतर स्थिति का आपको सामना करना है तो फिर आप बदतर स्थिति का पूरे तरीके से सामना करो, फिर उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और शायद ये मैसेज लोगों के बीच में गूंजा, इस वजह से ही फिल्म बड़ी हिट हुई। और इसके पीछे कोई स्वॉर्ड फाइटिंग जैसी चीज़ हिट होने के पीछे जिम्मेदार नहीं थी, ये कुरोसावा का कहना था, क्योंकि उनका लगता था कि उनके फिल्म का हीरो सच्चा हीरो है और वो जब लड़ता है तो सही कारणों से लड़ता है, इसी वजह से वो लोगों के बीच में उसको लेके एक प्रेम जागा है, लोग उसको पसंद करते हैं। ये थी सामुराई मूवीज़ और योजिम्बो और अंगरक्षक और बॉडीगार्ड की जो थीम है। इस पे एक और फिल्म है जिसका मैं जाते जाते जिक्र करूँगा जो इसी थीम पे बनी है, उस फिल्म का नाम है द ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल। ये 2017 में आई थी, इसको बनाया था ताकाशी मिके ने, जापान के डायरेक्टर हैं और बहुत ही सुकड़े से लगते हैं, एकदम पतले तिनके की तरह, लेकिन बहुत खूनी फिल्में बनाते हैं वो, जिसमें मतलब अंग कट कट के ऐसे गिरते हैं कि क्या बताएं। तो वो एक किस्म से सन की डायरेक्टर हैं और नृशंसता बहुत दिखाते हैं अपने कॉन्टेंट में। ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल भी एक बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग और एंटरटेनिंग फिल्म है, नशीली फिल्म है अनडाउटेबली। उस फिल्म के अंदर भी ऐसा होता है कि एक सामुराई होता है और वो ऐसा सामुराई है कि वो मर नहीं सकता है, उसको ये वरदान है कि वो अमर है। और ऐसे में एक लड़की होती है जिसके परिवार को कुछ बुरे लोग, सो कॉल्ड बुरे लोग भी, जो लेसर इविल और बिगर इविल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ नज़र आता है। और इसमें फिल्म आखिर तक थोड़ा इस द्वंद्व में हमको रखने की कोशिश करती है कि जिसको आप लार्जर इविल, बिगर इविल बोल रहे हो क्या वो है क्या, और जिसे आप लेसर इविल बोल रहे हो क्या वो है क्या। क्योंकि जो हमारा ये पात्र है सामुराई का द ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल में, जो उस लड़की के माँ बाप को मार दिया जाता है या जो कर दिया जाता है, तो लड़की बदला लेने के लिए किसी की सलाह पे जाके इसको अपना अंगरक्षक बनाती है, इससे मदद मांगती है और वो इस लड़की की मदद करता है, उसका अंगरक्षक सा बन जाता है, उसकी रक्षा करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे लेसर इविल ये सामुराय है, लेकिन ये सामुराय खुद ये नहीं मानता है कि ऐसा कुछ होता है, वो कहता है बुरा बुरा है। और उस लड़की से पूछता भी यही है, जब वो कहती है कि भाई तुम क्यों बदला लेना चाहती हो, तो उसने बोला मेरे माता पिता को मारा है क्या, तो क्या हो गया मारा है, तो हो सकता है इसके पीछे कोई कारण हो, तो ये कोई वजह बन जाती है कि मैं उसको मार दूं। तो अंत तक ये चलता रहता है, हालांकि वो सब उस लड़की की मदद करता है, हालांकि वो लड़ता है उसके लिए, लेकिन आखिरी फ्रेम तक ये होता है कि ये लेसर इविल और बिगर इविल वाली चीज़ ही भी फिल्म में बात होती है। तो वो जाता है और उस लड़की के लिए लड़ता है और अंत में क्या होता है ये देखने को मिलता है। बहुत इंगेजिंग सी फिल्म है, इसके अंदर बहुत सारे लंबे लंबे बैटल सीक्वेंसेस है, मतलब ऐसे सीक्वेंसेस है जिसमें एक तरफ वो खड़ा है, दूसरी तरफ पूरा गांव खड़ा है, ऑलमोस्ट गांव है योद्धाओं का। और सीन स्टार्ट होता है और थोड़ी सी देर बाद हम देखते हैं कि उसने ऑलमोस्ट सबको मार दिया और वो दूसरी तरफ खड़ा है, और पूरे गांव में जो जितने भी योद्धा फौज के तौर पर खड़े थे सबकी लाशें नीचे पड़ी है। और वो सीक्वेंस ऐसा है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉकर शाओलिन वाले अंदाज में तेज़ी से आगे भागते हुए निकल जाता है, बाकायदा एक एक व्यक्ति को मार रहा है, ये हमको दिखाया जाता है, उसकी तलवार चल रही है, वो शॉट्स चल रहे हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टायरिंग सीक्वेंसेस हैं। तो सिनेमा की दुनिया में जो सबसे कठिन सीक्वेंसेस हो सकते हैं उनमें से एक वो सीक्वेंस है। ऐसे कई हैं, दो या तीन ऐसे मेजर सीक्वेंसेस है। इसकी हिंसा के लिए फिल्म की आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन ये है कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको नहीं देख रहे हो इसलिए ये है। पर ये है, आप योजिम्बो ज़रूर देखें, योजिम्बो देखें, कुरोसावा की अनूठी फिल्म है, जो फिल्में बनाना चाहते हैं भविष्य में उनको भी यूजिम्बो ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत लिमिटेड फ्रेम्स हैं, बहुत लिमिटेड सीन्स हैं, तो आप अगर उसको 5-6 बार देखेंगे उस फिल्म को, तो आपके लिए बड़ा आसान होगा ये समझना कि स्क्रीन प्ले में क्या ध्यान रखें। आपके लिए समझना बड़ा आसान होगा कि आप उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू कैसे क्रिएट करें सीन बाय सीन। और आप बोल्ड स्ट्रोक्स लगाना सीखेंगे। बोल्ड स्ट्रोक्स का बहुत बड़ा महत्व है, जो आज की फिल्मों से घटी, आज जो OTT पे बाढ़ सी आई हुई कॉन्टेंट की, उसमें बोल्ड स्ट्रोक्स और ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजंस जो होते हैं, आर्टिस्टिक डिसीजंस होते हैं, नए डिसीजंस जो होते हैं, वो पूरी तरीके से मिसिंग है। तो ये है, आप द ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल भी देख सकते हैं, आप यूजिम्बो देख सकते हैं, आप चाहें तो अंगरक्षक भी देख सकते हैं, जो उन दिनों की फिल्में हैं जब एंटरटेनमेंट हमारे लिए आश्चर्य हुआ करता था रियलिटी से बच के निकलने का। और उस समय में इस फिल्म ने भी सपोर्ट किया, ऐसी कई फिल्मों ने सपोर्ट किया। सिने सन्यासी में आज बात यहीं तक। आप इसे सुन रहे थे बाजा पे। अगली बार फिर बातचीत किसी और फिल्म पे, किसी और विषय पे। आभार, प्रेम,